हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरहम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो अकरम को अपने सामने देखकर हैरान हुआ। वो कुछ बोला नहीं, केवल खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा। तभी उसने उस कमरे के गेट पर खड़ी रिया की ओर इशारा किया। रिया ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे वहां जाने लगी। जल्दी ही वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचकर अरहम के सामने खड़ी थी। अरहम रिया को अपने सामने देखकर चौंक गया और मुस्कुराकर रिया की ओर देखने लगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था तुम मुझसे मिलने आओगी, अरहम बोला। थैंक यू सो मच रिया, सब कुछ भूलकर मुझे माफ करने के लिए और मुझे देखने आने के लिए। उसकी बातें सुनकर रिया का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो सोचने लगी कि इसको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई कि मैंने इसे माफ कर दिया है। और उसने न आव देखा न ताव, अरहम के साइड टेबल पर रखी दवाइयों के पास एक बारीक सी कैंची देखी जो शायद उसकी पट्टी करते वक्त डॉक्टर वहीं भूल गए थे। उसने एक झटके से वो कैंची उठा ली और अरहम की कोहनी से ऊपर उसकी बाजुओं पर वो कैंची घुसा दी। अचानक हुए हमले से अरहम संभल नहीं पाया और उसकी एक भयानक चीख निकल गई। रिया उसकी चीख आंखें बंद करके सुनने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चीखों से उसे सुकून मिल रहा हो। रिया के वार से अरहम अंदर तक तड़प उठा। तब रिया ने उसका गिरेबान पकड़ा और बोली, तुझे क्या लगा मैं कमज़ोर हूँ? मैं तेरा सामना नहीं कर सकती, और तू मेरे पास आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। नहीं नहीं अरहम ठाकुर, ये गलतफहमी है तेरी, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। और हाँ, रही बात तेरी जान लेने की, तो हम तेरी जान ज़रूर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर हम तुझे मारेंगे, समझा तू? ऐसा कहकर रिया ने उसे पटक दिया। अकरम रिया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। अकरम को ये नहीं लगा था कि रिया ऐसा कदम उठा लेगी। वो अपनी होने वाली बीवी को सराहना वाली निगाहों से देख रहा था। अरहम की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी थीं। इससे पहले कि अकरम और रिया वहां से निकल पाते, उसकी माँ गजाला जी डॉक्टर को लेकर वहां पहुंच गई। उनको सामने देखकर अकरम अचानक हड़बड़ा गया और बोला, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आप लोगों को बुलाने ही जा रहे थे। तब अकरम और रिया को वहीं रुकना पड़ा। उन्हें पता था अगर वे वहां से अब इन सब के सामने भागे तो जरूर वे शक के घेरे में आ जाएंगे। गजाला जी ने अरहम की बाजू में कैंची घुसी हुई देखी तो वो चिल्ला उठी और जोर जोर से विलाप करने लगी। ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये, कहकर गजाला जी ने अकरम और रिया की ओर देखा। तब अकरम सामने आया और बोला, जैसे ही ये होश में आया तो अजीब से पागलों वाली हरकतें करने लगा था और अचानक इसने पास में पड़ी हुई कैंची उठाकर अपने बाजू में दे मारी। हम लोग तो बहुत डर कर थे, ये देखिए मेरी बीवी अभी भी कितना घबराई हुई है। ऐसा कहकर अकरम ने रिया की ओर इशारा किया जिसे अभी भी पसीना आ रहा था। तब गजाला जी अरहम से पूछने लगी, ये क्या हुआ है बेटा, तुझे किसने मारा? तू बस एक बार उसका नाम बता, फिर देख मैं कैसे उन्हें जेल में भिजवाती हूँ। ऐसा कहकर वो अकरम रिया की ओर देखने लगी। तब अरहम बोला, नहीं मॉम, मुझे किसी ने नहीं मारा है, ये सब मैंने खुद किया है। अचानक से मुझे बहुत तेज जलन और इचिंग होने लगी थी। अकरम के आने के बाद मैंने उससे कैंची ली, तब न जाने मुझे क्या हो गया और मैंने चिल्लाकर कैंची से काट लगा दिया था। अरहम ने रिया को आंख मारते हुए कहा। रिया का पारा उसकी इस हरकत से सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। रिया का मन किया कि वो एक बार और उस कैंची को उठा ले और उसकी आंख में ही घोंप दे। वेल, जल्दी ही डॉक्टर ने अरहम की कैंची निकालकर उस पर ड्रेसिंग की और टांके लगाए। अरहम को काफी दर्द हो रहा था और वो सांस के साथ आह भर रहा था, लेकिन अरहम का ये दर्द कुछ भी नहीं था जो उसने रिया और जोया को दिया था। केवल अपने पागलपन के चलते वो उन दोनों को जिंदगी भर का दर्द दे गया था। अरहम ने रिया के साथ भी कुछ कम ज्यादती नहीं की थी। अगर उस दिन मौका देखकर रिया ठाकुर मेंशन से नहीं भागती तो शायद अब तक उसकी हड्डियां भी गल चुकी होतीं। अरहम ने दिन रात उसकी इज्जत लूटी थी। उसके शादी के प्रपोजल को इनकार करने के बाद उसने रिया से उसके इनकार का गिन गिन कर बदला लिया था। रिया की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसके जिस्म के अनगिनत निशान जाने में साल लग गए थे। वेल, आज रिया ने एक छोटी सी शुरुआत कर दी थी अरहम को चाकू घोंप कर, और ये उसके बदले का अंत नहीं, शुरुआत थी। अकरम और रिया अरहम की मरहम पट्टी के बाद वहां से चले गए थे। उनके जाते ही गजाला जी ने अरहम से बोला, मुझे तुम्हारे ये दोस्त काफी अजीब लगे थे, कहीं इन्होंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। तब अरहम बोला, नहीं मॉम, ये मेरे दोस्त हैं इंडिया से, इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब आप ये बताइए, हम लोग यहाँ से अबीर भाई के यहाँ रहने कब जा रहे हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में रहकर तो मैं पागल हो जाऊँगा, और मेरा पागलपन आप देख ही चुके हैं। उसकी बात सुनकर गजाला जी अरहम से बोली, आप क्या बताऊं बेटा, तू तो जानता है अबीर मेरा सौतेला बेटा है, और सौतेला तो सौतेला ही होता है, भला वो क्या सगे वाली मोहब्बत कर पाएगा, कभी नहीं। मैंने उसे फ़ोन करके बोला भी था कि तुझे चोट लगी है, हॉस्पिटल आ जाए, लेकिन देखो हॉस्पिटल आना तो दूर की बात, उसका एक कॉल तक तेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं आया है। अरहम बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो जानता था उसकी माँ ने कभी भी अबीर को माँ वाली मोहब्बत नहीं दी होगी। जब ये औरत अपने सगे बच्चों की नहीं हो सकी तो भला सौतेले बेटे की कहाँ से होगी। तब अरहम ने गजाला जी से चबा चबा कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता मॉम, आप कुछ भी करें लेकिन मुझे अबीर भाई के घर में शिफ्ट कराइए। तब अरहम को अपनी माँ की कमजोरी याद आई और बोला, माँ आपको नहीं पता इस देश और शहर में अबीर का बड़ा ही बोलबाला है, अगर मेरा नाम अबीर के भाई के रूप में जुड़ जाएगा तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट डील्स मुझे यूं ही चुटकियों में मिल जाएंगे, और कुछ ही दिनों में मेरे पास अबीर राठौड़ साहब से भी ज्यादा पैसा होगा। पैसे का नाम सुनते ही गजाला जी की आंखों की चमक बढ़ गई और बोली, ओह ऐसी बात है, तो मेरे बेटे तू फिक्र ना कर, तू देख मैं कैसे तुझे अबीर के घर में जगह दिलाती हूँ। ऐसा कहकर गजाला जी कोई प्लान बनाती हुई वहाँ से निकल गईं। उनके जाते ही अरहम ने अपनी माँ को जाते हुए देखकर कहा, लालची औरत, ऐसा कहकर वो आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर अभी तक जोया को होश नहीं आया था और अबीर उसका हाथ थामे ऐसे ही बैठा हुआ था, और अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी डॉक्टर जोया की रिपोर्ट हाथ में लेकर वहाँ आ गई और बोली, मिस्टर राठौड़, मिसेस राठौड़ की रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक इनके पेट में जो बच्चा है उसे हमें सातवें महीने में ही डिलीवर कराना होगा, क्योंकि मिसेस राठौड़ काफ़ी कमज़ोर हैं, इनका शरीर बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में नहीं रख पाएगा, इसलिए बच्चा 7वें महीने में ही डिलीवर कराना होगा। ये सुनते ही अबीर परेशान हो गया और बोला, क्या बच्चा ठीक तो रहेगा? तब डॉक्टर बोली, देखिए नॉर्मली अगर बच्चा 7वें महीने में डिलीवर हो जाता है तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा उसे बचाया जा सकता है, और 90% बच्चे 7वें महीने में पैदा होने पर जी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। अबीर के साथ साथ जोला जो कब की होश में आ गई थी वो बड़े ही ध्यान से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। तब अबीर ने कहा, मेरी बीवी की जान को तो कुछ खतरा नहीं रहेगा ना? तब डॉक्टर बोली, नहीं नहीं मिस्टर राठौर, मिसेस राठौर केवल कमज़ोर हैं, अदरवाइज सब ठीक है, केवल इनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखना है और इनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है।
तब अबीर कुछ सोच कर बोला, अच्छा डॉक्टर, ये बार बार बेहोश क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है? तब डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो अबीर साहब एक्चुअली, डॉक्टर जवाब देने के बजाय मे करने लगी, जिसकी वजह से अबीर राठौड़ को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये क्या आपने मे लगा रखा है, आप साफ साफ बताइए, बार बार जो मेरी बीवी बेहोश हो जाती है इसका क्या कारण है? तब डॉक्टर बोली, वो एक्चुअली सर, जिस्मानी सेक्स रिश्ता ज्यादा बार होने की वजह से उनके अंदर की बच्चेदानी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से इनकी कोख ज्यादा दिनों तक इस बच्चे का बोझ नहीं संभाल पाएगी। ये सुनते ही अबीर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कसकर भींच ली थीं और एकदम से ही उसकी आंखों में खून उतर आया था, और उसे अक्रम के द्वारा बताई गई एक एक बात याद आ गई थी, एक एक ज्यादती याद आ गई थी जो अरमान और अरहम ने जोया के साथ की थी। अबीर की सुर्ख आंखें देखकर डॉक्टर डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। जोया ने अबीर को गुस्सा करते हुए देख लिया था और वो ये समझ गई थी कि उस वक्त अबीर क्या सोच रहा था। तभी जोया ने कुछ देर कुछ सोचा और धीरे धीरे उठने लगी, और जैसे ही अबीर ने जोया को होश में आते हुए देखा तो वो एकदम से जोया के पास जा बैठा, उसका हाथ पकड़कर और बोलने लगा, जोया प्लीज उठिए, जोया आप ठीक है ना, जोया उठिए। जोया को अबीर की परेशानी वाली आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जोया मन ही मन अबीर के बारे में ही सोच रही थी कि क्या वाकई अबीर उसे मोहब्बत करता है, क्या वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, क्या सच में उसकी मोहब्बत सच्ची है। जोया के दिल में इस वक्त तूफान मचा हुआ था, लेकिन ज़ोया को अंदाज़ा नहीं था कि अरमान ठाकुर ज़ोया की ज़िंदगी में तहलका मचाने के लिए जल्दी ही आने वाला है।